राग विज्ञान नमोता की जाते भई अरहंताति जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर निरंतर विचार कर रहे हैं। हमने ये जीवन में स्वयं अनुभव किया है कि यदि हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास न हो तो एक कदम भी हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, सही दिशा में तो बढ़ ही नहीं सकता। हम अपने जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो हमें उन महान आत्माओं के प्रति श्रद्धा अपने जीवन में उत्पन्न करनी होगी जिन्होंने उस सही दिशा में आगे बढ़कर अपने जीवन को अच्छा बनाया है, या कि जो सच्चे मार्ग पर चलकर अपने जीवन को अच्छा बनाने में लगे हैं उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा हमारी भी जीवन की दिशा को बदलने में कारण बन जाती है। एक पक्षी किसी के घर में खिड़की के रास्ते से भीतर घुस गया। उसने सोचा था कि भीतर पहुंचकर कोई खाने पीने की चीज़ होगी वो मुझे मिल जाएगी। भीतर जाने के बाद वो थोड़ी देर खाने पीने की चीज़ ढूंढता रहा, फिर उसका मन में आया कि अब लौटना चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल में पड़ा क्योंकि दरवाज़ा बंद था और कमरे की जिस खिड़की से वो आया था वो एकमात्र खिड़की खुली हुई थी और वो जो घर का मालिक था वो भी बैठा हुआ था वहाँ पर। उसके मन में आया कि निकलूं कैसे। उस घर के मालिक को भी ये बात देखने में आ रही थी कि ये व्यर्थ यहाँ से वहाँ दीवालों में निकलने के लिए मार्ग खोज रहा है, टकरा रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान है। इसको क्या इतना भी समझ में नहीं आता कि वो सामने खुली खिड़की है उससे निकल जाए। उसने एक दो बार उसको उस खिड़की की तरफ उड़ाने की कोशिश भी की लेकिन वो तो बहुत घबरा गया और अधिक। असल में उसके मन में एक विचार था कि जिस खिड़की के रास्ते से मैं यहाँ कमरे में आकर के फंस गया हूँ उससे मैं बाहर कैसे निकल सकता हूँ। और बात तो सही है, जिस माध्यम से हम बंधन में पड़ते हैं उसी को हम अपनाए रहें तो बंधन से कैसे मुक्त होंगे। पर वो ये भूल गया कि मैं जब खिड़की से बाहर निकलूंगा तो मेरी वो दिशा नहीं होगी जिस दिशा में मैंने खिड़की से भीतर प्रवेश करके बंधन में बंधने का उपाय किया था। पर इतनी सी बात उसके समझ में नहीं आती थी और अपन को भी ये बात बहुत मुश्किल से समझ में आ पाती है कि जिस मोह के द्वार से और मैं इस संसार में प्रवेश करके बंधन में पड़ गया हूँ, मैं अपन अपनी दिशा बदल लूँ उस मोह के विपरीत दिशा में मैं अगर चाहूं तो उसी द्वार से मैं बाहर भी निकल सकता हूं। सिर्फ मेरी दृष्टि बदलनी चाहिए। जिस मोह के द्वारा मैं इस संसार में बंधन में पड़कर दुख भोगता हूं, अगर मैं उस मोह को तोड़ दूं, उस मोह को छोड़ दूं, तो मैं बंधन से मुक्त होने के लिए कोई अधिक मुझे उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारी एक जिद होती है और इस तरह की जिद होती है कि नहीं, मेरा तो जब समय आ जाएगा तो अपने आप मेरा मोह भी घट जाएगा, और अभी क्या करें, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो भैया, ऐसा कोई समय किसी का आने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष होता जिससे हमारा कोई कमिटमेंट हुआ होता कि वो हमारे कल्याण के लिए आएगा, और डेट वेट निश्चित हो गई होती कि वो उस दिन आएगा और अपन को ले जाएगा और यहाँ से संसार से पार लगा देगा, ऐसा तो हुआ नहीं। अब किस समय का इंतजार करें हम? समय तो प्रतिक्षण व्यतीत होता चला रहा जा रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि शायद जब हमारा समय आएगा तो अपने आप ही हमें वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, हमारा मोह घट जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं घटेगा। हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। संगी पंचेंद्री पना हमने प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर लिया, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान होना, ये भव्य जीव का लक्षण है। अगर अपन मोटा हिसाब लगाएं तो वो भी हमें प्राप्त है। हम जागृत भी हैं, अपने कल्याण के लिए उत्सुक भी हैं, लेकिन कहाँ थोड़ी सी कमी हमारे भीतर रह जा रही है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अनंत भगवान के प्रति हमारे मन में अगर सच्ची भक्ति नहीं है और करुणा भावो या मनु तिरियेसु, और प्राणी मात्र के प्रति अगर हमारे चित्त में करुणा भाव नहीं है, तो एदस मोहानी लिंगानी, यही तो हमारे मोह के चिन्ह है। मैं इन्हें पहचानूं और मैं अपनी अनंत भगवान के प्रति भक्ति और प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव को अपने जीवन में बढ़ाऊं, इतना उपाय तो मुझे अपनी उस दृष्टि की निर्मलता के लिए, अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए इतना उपाय तो रोज करते रहना चाहिए। अनंत भगवान की भक्ति के मायने सिर्फ ये नहीं है कि मैं पूजा पाठ अभिषेक कर लूं, नहीं, मैं अनंत भगवान की मुख मुद्रा को, उनकी वीतराग छवि को देख करके यह विचार करूं कि जैसा द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व भगवान अनंत के भीतर प्रकट हुआ है, वैसी ही सामर्थ मेरे भी भीतर है। मैं अपनी उस सामर्थ को प्रकट कर सकता हूं, मैं भी उस अनंत अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए मैं अनंत भगवान की वीतराग मुद्रा के दर्शन करने आया हूं, ताकि इन जैसे अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। वास्तव में भक्ति वो कहलाएगी। ऐसी भक्ति हमारे मन में 24 घंटे बनी रह सकती, ये तो अपन घंटे भर करते हैं भगवान के गुणगान, लेकिन बाकी 23 घंटे भी ये भाव हमारे मन में बना रहे, ऐसा हमारे भीतर श्रद्धान जागृत हो जावे कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही स्वरूप को प्राप्त करना है, मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि मैं बन सकता हूँ, और प्राणी मात्र के प्रति मेरे मन में सद्भाव अपने आप ही बढ़ेगा धीरे धीरे करके। और ये दोनों चीज़ें, इतनी भूमिका तो होनी ही चाहिए। एक व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा है, चल नहीं रहा। लोग कहते हैं कि भाई चलोगे नहीं क्या? कहते मुझे चलना तो है। तो कब चलोगे? कहते जब सूरज उगेगा तब तो रास्ते पर चलूंगा। अरे भाई, तो तुम आंख बंद किए तो बैठे हो। कहते नहीं, मैं तो आंख भी तभी खोलूंगा जब सूरज उगेगा, और जब सूरज उगेगा तब चलूंगा। अब उस बुद्धू को कौन समझाए कि भाई सूरज जब उगेगा लेकिन तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा? आंख खोल के बैठने का पुरुषार्थ इतना तो करना पड़ेगा, सूरज जब उगेगा तब ठीक है। उतने थोड़े से पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं, श्रद्धा के लिए, और कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना है। इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, इतनी भूमिका तो अपने अंदर बनानी पड़ेगी, इतनी रिसेप्टिविटी तो हमारे अंदर आनी पड़ेगी कि कहीं कुछ हमें प्राप्त होने वाला हो तो हम उसे झेल सकें, उसे प्राप्त करने के लायक हमारी भूमिका तो हो, हमारे भीतर श्रद्धा जागृत हो। इसके लिए इतना तो हम पुरुषार्थ करें कि अनंत भगवान के प्रति हमारे मन में अत्यंत प्रगाढ़ भक्ति हो जो 24 घंटे बनी रहे, और मैं अपने रोजमर्रा के जीवन में प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखूं। इतना पुरुषार्थ तो एक सामान्य व्यक्ति को भी अपने जीवन को ठीक दिशा देने के लिए करना ही चाहिए। इस दृष्टि की निर्मलता की प्रशंसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बात की है। आज अपन सम्यक दर्शन के उपसंहार में, और जैसी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस सम्यक दर्शन और दृष्टि की निर्मलता की प्रशंसा की है, महत्ता बताई है, उसको एक बार और देख लें, जान लें, ताकि हमारे भीतर उसे प्राप्त करने की ललक हमेशा बनी रहे, 24 घंटे ये विचार बना रहे कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे ये दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो, मेरा जीवन सार्थक हो सके, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। इतनी बड़ी बात कोई आचारी भगवंत ही कह सकते हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो, निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, नैव मोहवान अनगारो, लेकिन मोह से युक्त एक मुनि भी मोक्ष मार्गी नहीं है। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। अब फूल करके कुप्पा नहीं हो जाना, हाँ ये सावधानी रखना, अभी समझ लेना पूरा। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो और नैव मोहवान अनगारो, ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि, मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। इतना और सुन लो, अब तो बहुत मजा आ गया। दोनों बातें कितनी बढ़िया लिखी हैं। बुलाओ तो समंतभद्र आचार्य महाराज को, जरा उनके पैर छू लें, पहले क्यों नहीं बताया, हम तो वहीं बढ़िया हैं। ऐसे भ्रम की स्थिति निर्मित करने के लिए नहीं लिखी गई ये लाइनें, ये तो उस दृष्टि की निर्मलता की महत्ता, उसकी प्रशंसा के लिए लिखी गई है, अपने भीतर झांकने के लिए लिखी गई है, सबके लिए, गृहस्थ के लिए भी और मुनि महाराज के लिए भी, क्योंकि आचार्य भगवंत हैं, वे दोनों का कान पकड़ सकते हैं, दोनों के लिए ठीक रास्ता दिखा सकते हैं। वे गृहस्थ की प्रशंसा करके और मुनि महाराज के लिए दिशा बोध दे रहे हैं कि भाई तुमने इतना सब कुछ किया लेकिन तुम्हारे मन में श्रद्धान उत्पन्न नहीं हुआ, अभी तुम्हारे भीतर से मिथ्यात्व की ग्रंथि तुम नहीं हटा पाए, इतना सब कुछ बाह्य में तुमने त्याग किया है लेकिन भीतर तुम्हारे वह वीतराग भाव नहीं उत्पन्न हुआ, तुम्हें वह प्राप्त करना चाहिए। तुमने इतना कुछ किया है वह व्यर्थ नहीं है, लेकिन तुम यह जो नहीं कर पाए हो, मैं तुम्हें उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। जैसे कि पहली में केजी वन वाले के 99% नंबर आ जावे और एमए पढ़ने वाले उसी के बड़े भाई को नंबर कम आने पर सप्लीमेंट्री लग जावे, और पहले केजी वन वाला अपने बड़े भाई से कहे कि देखा मैं तो टॉपर हूं, टॉपर अपनी क्लास का, और भैया देख लो आपकी क्या स्थिति है, तब भी भैया की स्थिति इनसे बेहतर ही है, एमए पढ़ रहे हैं जी, केजी वन में हैं, भले ही टॉपर हैं। ये ध्यान में रख करके इस चर्चा को करना। वो एमए में जो पढ़ने वाला है उसके कम नंबर आने पर उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा वो उतना छोटा सा भाई, उसके देखो कितने सारे नंबर आए, अब तुम भी थोड़ा मेहनत करो। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम इसको छोड़ करके गृहस्थ बन जाओ सो ज्यादा अच्छी हो, ऐसा कह रहे हैं क्या? या गृहस्थ को ये कह रहे कि तुम तो गृहस्थ ही बने रहो, वो मुनि ने बनी हो, जा कह रहे क्या? नहीं, यहां ऐसा तो है ही नहीं, लेकिन हमारे मन में यही भाव आ जाता है, हमारे सामने कह रहे नहीं, बाकी पीछे तो जो ही भाव आ जाते अपन अच्छे हैं। कबीर महाराज भी कह रहे थे, देखो लिखो भी है वो भी। नहीं, इसके लिए नहीं कह रहे, भीतर की मिथ्या की ग्रंथि कैसे हटे इसके लिए हम सबको उपाय करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। बाह्य में हम जो आचरण अंगीकार करते हैं उसका उद्देश्य मेरे भीतर की ग्रंथि को हटाने के लिए होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं बाह्य में आचरण तो करता रहूं, मैं गृहस्थ जीवन में या कि मुनि बन करके और बाह्य क्रियाएं दोहराता रहूं और मेरे भीतर की गुंडी ना खुले मिथ्यात्व की। इसलिए कह रहे हैं, सो तो एक मोही मुनि को संबोधन करने के लिए या कि उलझे हुए मुनि को संबोधन करने के लिए जहां एक बार सुलझे हुए गृहस्थ का उदाहरण दिया है, वहीं पर उलझे हुए गृहस्थ के लिए सुलझे हुए पशु का भी उदाहरण दिया। वर्णी जी हमेशा कहा करते थे कि भैया तुम गृहस्थी में रह करके जा इतनी शुद्धोपयोग शुभोपयोग की चर्चा में उलझे हो, तुमसे तो अच्छे भी घासोपयोगी है कि घास काके कम से कम चित्त तो निर्मल रखते। हाँ, ऐसा लिखा वो उपयोग की स्टाइल में कह रहे हैं वो कि तुम शुभोपयोग शुद्धोपयोग में उलझे हो, वो घासोपयोगी ज्यादा ठीक है, जिनका उपयोग घास में है पर निर्मल है, किसी से छल कपट नहीं है, कहीं कोई दुर्भाव नहीं है, सबके प्रति सद्भाव है, वो है सुलझापन। भीतर में अपने कल्याण की इच्छा होना और प्राणी मात्र के कल्याण में निमित्त बनना, ऐसी दृष्टि हमारे भीतर उत्पन्न होनी चाहिए जहां भी हम हो, वहां चाहे गृहस्थ जीवन में हो और चाहे हम अपनी साधना में कोई साधक का जीवन व्यतीत कर रहे हो, उद्देश्य हमारा अपने आत्म कल्याण का हो और साथ में प्राणी मात्र के कल्याण की हमारे भीतर भावना हो, ये दोनों चीजें ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली हैं। इस अपेक्षा से जो जहां है वहीं रुका ना रह जावे, वो उससे आगे बढ़े, इस बात की प्रेरणा के लिए ये लाइनें लिखी गई हैं, किसी को नीचा दिखाने या किसी की अतिरिक्त प्रशंसा करने के लिए नहीं लिखी गई। तब इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं समझाने के लिए कि गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हो सकता है उस दृष्टि की निर्मलता के द्वारा, और जिसे दृष्टि की निर्मलता नहीं प्राप्त हुई है ऐसा कोई साधक जो है वो मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएगा, उसे मोक्ष मार्गी बनने के लिए इस दृष्टि की निर्मलता को प्राप्त करना चाहिए। सम्यक दर्शन शुद्धा नारग तिर्यग नपुंसक स्त्रीत्वानु दुष्कुल विकृताल पायु दरिद्रताम जन ब्रजंती नाप प्रतिका। अवृत्ति होकर के भी जिसके जीवन में दृष्टि की निर्मलता आ गई है, जिसने कोई व्रत नियम भी नहीं अंगीकार किए हैं, मात्र जिसे अपने आत्मा के कल्याण की रुचि है और प्राणी मात्र के कल्याण का भाव जिसके भीतर है, ऐसा व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि अगर मरण को प्राप्त हो तो कहां कहां उत्पन्न नहीं होगा, नरक में नहीं उत्पन्न होगा। सम्यक दर्शन शुद्धा, जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई है वो नरक नहीं जाएगा, तिर्यंच में उत्पन्न नहीं होगा। ये बात अलग है कि उसने पहले तिर्यंचायु बांध ली हो और बाद में दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हुई हो तो भोग भूमि में जाकर तिर्यंच उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वैसे अगर दृष्टि निर्मल है तो फिर वो तिर्यंच में नहीं जाएगा। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक कोई भी तिर्यंच, ये जो पशु इत्यादि हैं पक्षी हैं, इनमें उत्पन्न नहीं होगा। नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानी, उसे एकमात्र पुरुष वेद ही प्राप्त होगा, अन्य दोनों वेद उसे प्राप्त नहीं होंगे। इतना ही नहीं, दुष्कुल ऐसे खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होगा जहां की व्यसन होते हो, जहां लोग जुआ शराब और जितनी भी अपराध हैं वो करते हो, उस कुल में उत्पन्न नहीं होगा जिसकी दृष्टि निर्मल है। और कह रहे हैं विकृत और अल्प आयु भी नहीं होगा, पूर्ण आयु लेकर के उत्पन्न होगा और शरीर में कोई अंग भंग नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा। इतना ही नहीं, दरिद्र चामचन ब्रजंती, और उसको सब बात के सुख होंगे, कहीं कोई अभाव नहीं होगा, दरिद्रता नहीं होगी। इसके मायने ये मत लेना कि जिस जिस के पास धन पैसा खूब है वे सब सम्यक दृष्टि है, नहीं तो आप ऐसा इससे अर्थ लगा लो। हाँ नहीं, वो जो अंतरंग की संपन्नता है वो प्राप्त होगी, नहीं तो वो लाइन याद करना पड़ेगी कि दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। ये दोनों ही दुखी हैं। वो जो अंतरंग में आत्मा में संपन्न है वो है संपन्न, यहां बाहर की दरिद्रता और संपन्नता नहीं है, ये ध्यान रखें। अभावग्रस्त नहीं होगा वो, उसे जितना आवश्यक है अपने जीवन के लिए उतना प्राप्त होगा, उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ऐसा दृष्टि की निर्मलता से हमारे लिए जीवन में ये सब उपलब्धियां होती हैं। लगता तो अच्छा है कि अपन खुंजे सब ऐसी चीजें मिल जाती हैं, उसके लिए प्रयत्न कितना करना है, इतना ही प्रयत्न करना है कि मैं अपनी दिशा ठीक ठीक रखूं। अभी मैं अपने विषय कषायों की पूर्ति में ही जीवन व्यतीत करता हूं, मैंने वही दिशा अंगीकार कर रखी है। संसार के सुख सुविधा के साधन की दिशा में आगे बढ़ना ही मुझे श्रेयस्कर जान पड़ता है, नहीं मेरे आत्म कल्याण की दिशा में मुझे एक कदम जरूर रखना है, ऐसा मेरे भीतर भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब कहलाएगा कि हाँ अब सच्ची दिशा मुझे मिल गई है, अब मेरी दृष्टि में वो जो सच्चा मार्ग है वो ठीक ठीक दिखने लगा है, तब ये सारी उपलब्धियां अपने आप पीछे पीछे हमें प्राप्त होती चली जाएंगी। इन सब चीजों की प्राप्ति के लिए दृष्टि की निर्मलता नहीं प्राप्त करनी है, दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो जाने से ये अपने आप प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाता महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा हमरा सरसाम परिसदि चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे नौ निधि सप्तद्वय रत्नाधीशा भूल रहा हूं और फिर भूल गया तो भूल गया शैवोपशम ज्ञान का यही है। नौ निधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयस् वर्तयितुं प्रभवन्ती स्पष्ट दृशा शत्र मौली शेखर चरणा अमरा सरसाम परिसदी, ये नहीं वो दूसरे पद की लाइन आ गई। अंत में कह रहे हैं महिमा बताते हुए कि देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मौनींद्र शिरोर्चनीयम धरणेन्द्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपयति भव्या। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से संपन्न अर्थात दृष्टि से संपन्न या कि सम्यक दर्शन से युक्त जीव क्या क्या प्राप्त करता है, ये सब चीजें उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाती हैं। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा, देवों में उत्पन्न, पहले तो मनुष्यों में उत्पन्न होता है तो नव निधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयस् चक्रम, चक्रवर्ती बन करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। सो चक्रवर्ती बनने का मतलब ये नहीं है कि अपार भोग विलास के बीच जीना, नहीं, अपार भोग विलास के बीच भी कैसे अनाशक्त होकर के जिया जाता है इस बात की साधना करना, ये उसकी दृष्टि में है। नहीं तो हम ये सोच के बैठ जावे कि वाह कितनी बढ़िया बात बताई कि दृष्टि की निर्मलता से और संसार और बढ़ गया। संसार बढ़ने के लिए नहीं है, अपार संसार के बीच भी वो कैसे अनाशक्त हो लेता है। राजेंद्र चक्र मौनींद्र शिरोर्च नियम, ये उसे समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ पद प्राप्त हो जाता है और उधर उधर जाकर के देवों के स्वामी इंद्र के पद को भी प्राप्त कर लेता है और वहां से आकर के धर्मेंद्र चक्र अधरीकृत सर्वलोकम, तीनों लोकों को जीतने वाले धर्म चक्र को धारण करने वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेता है। सो तीर्थंकर पद पाकर के भी वहीं बैठे रहता है ऐसा नहीं है, शिवम लभन्ते, फिर मोक्ष की प्राप्ति भी इसी दृष्टि की निर्मलता से होती है। वर्णी जी, बड़े वर्णी जी जब साधु बन गए तो लोगों ने कहा, जैनी नहीं थे वो, असाटी थे, और जैन साधु बनने के बाद लोगों ने ये कहा कि काय वर्णी जी अच्छो खावे पीवे मिल है, इसे जैनियों के बाबा बन गए, ऐसा उनको कहा। तो भोजन को भुक्ति कहते संस्कृत में। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान हो गए थे वर्णी जी, न्याय न्याय तीर्थ थे, न्यायाचारी। जितने संस्कृत विद्यालय आज वर्तमान में दिखते हैं सब उन्हीं की प्रेरणा से निर्मित हुए हैं। जिन दिनों में कोई संस्कृत का तत्वार सूत्र पढ़ के नहीं जानता था, उस समय की बात है ये, जब एक लड़के ने पूरा तत्वार सूत्र वर्णी जी को संस्कृत का पढ़ के सुनाया था, तो बड़े प्रसन्न हो करके और कहा था समाज से कि भैया हाथी बुलवाओ, हाथी पर उसको बिठाल के सूत्र जी उसके सिर पे माथे पर विराजमान करके सब में शोभा यात्रा निकाली थी। ये समय था उस समय, इतनी भारी जो है संस्कृत की उस समय सम्मान था वर्णी जी के समय में। तो भुक्ति शब्द भोजन को कहते, तो वर्णी जी ने उत्तर सुन प्रश्न सुन करके, उनका व्यंग था वो, तो वो सुन करके बड़े शांत रह के क्या कहा कि भैया ये मार्ग में भुक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी इसी मार्ग में मिलती, इसलिए आया हूं मैं। भुक्ति तो और जगह भी मिल सकती थी लेकिन मुक्ति तो इसी मार्ग से मिलेगी मुझे, इसलिए मैंने ये मार्ग चुना है, ये वीतराग मार्ग मैंने अकेले भोजन के लिए नहीं चुना। इतनी प्रकार श्रद्धा में श्रद्धा की बात क्या कि इस मार्ग से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, बाकी सब छोटी मोटी उपलब्धियां वो मुझे प्राप्त करने के लिए दृष्टि की निर्मलता नहीं चाहिए, मुझे तो उस दृष्टि की निर्मलता से अपने उस परम विशुद्ध अवस्था का अनुभव करने के लिए लालसा है, उसकी मुझे आकांक्षा है, उसकी मुझे भावना है। ऐसा विचार अपने मन में इस श्रद्धा के प्रति, प्राप्त करने के प्रति ऐसी लगन होनी चाहिए। भैया एक घटना जो मैं हमेशा सुनाया करता हूँ, इस बार सम्यक दर्शन की सारी चर्चा हो जाने के बाद भी वो मेरे से भूल गई वो घटना, वो और सुनाता हूँ। कल से अपन सम्यक ज्ञान की चर्चा शुरू करेंगे, आज इसका उपसंहार करते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में 150 श्लोकों में एक सदगृहस्थ के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की जो चर्चा करी है वही अपन यहाँ पर और कर रहे हैं। बीच में 2-4 गाथाएं मेरे से श्लोक छूट गए होंगे, बाकी तो अपन ने 41 श्लोक जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहे हैं उनका अर्थ यहाँ अपन ने खेल खेल में सहज भाव से समझ लिया। एक ग्रंथ आराम से 150 दिन में, और एक श्लोक भी हम पढ़ें तो हो सकता है ये टेक्स्ट बुक समझना चाहिए हर सदगृहस्थ को, इसका स्वाध्याय तो अवश्य ही करना चाहिए, जिससे दृष्टि निर्मल होती है, ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है वो आत्मज्ञान में बदल जाता है और आचरण आचरण हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाला हो जाता है। उसमें 41 श्लोकों में जो अपन ने सम्यक दर्शन की चर्चा करी है उसके आखिरी में इतनी ही बात कह रहा हूँ कि श्रद्धा हमारे जीवन में कितने बड़े परिवर्तन कर सकती है ये हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। एक पंडित जी थे, नदी के उस पार रहते थे। एक दिन किसी के पूजा पाठ के लिए नदी के इस पार आए, वहाँ उनका एक मित्र मिल गया, ग्वाला था वो, दूध बेचता था। उसको देखते ही साथ पंडित जी को याद आया, कह रहे अपने थे तो दूध की बड़ी मुश्किल है, हैं? तो इससे बात की जाए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई ग्वाले भाई, उस तरफ नदी के उस पार तो दूध की बड़ी मुश्किल होती है, तुम कुछ व्यवस्था करो। तो उसने कहा पंडित जी अरे इसमें क्या बात है, अपने यहाँ तो मटकी मटकी बहुत दूध होता है, बस इतना ही है कि उस पार ले जाने की व्यवस्था आप कर दो, जरा नाबिक भाई को आप कह दो हमारी बेटी जो है घड़ा भर करके दूध ले जाएगी, वो नाव में बिठाल कर उस पार छोड़ दे तो आपको आसानी से रोज़ दूध मिल जाएगा। पंडित जी ने नाबिक भाई से बात कर ली, उसने कहा ठीक है मैं छोड़ दिया करूँगा। बात हो गई और प्रक्रिया शुरू हो गई। 10-12 साल की बेटी सिर पर घड़ा रख के नाव में बैठ करके और चली जाती। पंडित जी को यहाँ दूध पहुँचने लगा, लेकिन दो तीन दिन तक तो ये क्रम चला, उसके बाद में जरा गड़बड़ा गया। गड़बड़ा इसलिए गया क्योंकि नाविक भाई की कभी देर से नींद खुले तो अब वो तो खड़ी हुई है नदी किनारे घड़ा लिए हुए, और फिर जब नाविक नाव से ले जाता तब पहुँचती तो देर हो जाती तो डांट पड़ती पंडित जी की कि अब लेके आए वो दूध, कोई 8 बजे दूध लाने का समय है क्या? अब आजकल की बात अलग है कि अपन तो 8 ही बजे उठाते हैं, क्योंकि पहले का खाने दूध है कि नहीं, वो तो महाराज जी आए हैं सो सवेरे से उठने पड़ रहा, नहीं तो आराम से उठते हैं है? हाँ। तो पंडित जी ने उसको डांट देते थे हर दिन कि इतने देर देर से लेके आती है। अब एक दिन तो ऐसा हुआ, अब वो बार बार कहे पंडित जी से कि मेरी इसमें तो गलती नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे से और घड़ा लेकर के नदी किनारे आ जाती हूँ, अब मल्ला भैया को समझाओ आप कि वो जल्दी से जागें और मुझे यहाँ ले आएं। अब एक दिन तो ऐसा हुआ कि 10 बज गए, अब जब वो 10 बज गए उसने देखा कि अब घड़ा तो पहुँचाना है, तो पहुँची वहाँ पर तो आगे के दरवाजे की तरफ पंडित जी कथा बाँच रहे थे, 2-4-10 जने बैठे सुन रहे थे। उसने कहा आज तो कथा भी बचना शुरू हो गई, इतनी देर हो गई, अब क्या करें? तो पीछे के दरवाजे से धीरे से घड़ा भीतर रखा और लौटने लगी, तो उसने सोचा लौटते लौटते थोड़ी कथा भी सुन ले, मैं पंडित जी थोड़ी देख पाया अपन को, घड़ा मिल जाएगा उनको, अब जो कहना होगा सो कल देखेंगे। तो पंडित जी की कथा भी पूरी होने वाली थी और बार बार पंडित जी आखिरी में उपसंहार करते हुए कह रहे थे कि भैया जो भगवान का नाम लेता है, भगवान के प्रति जिसके मन में भारी श्रद्धा है, तो नाम लेने मात्र से वो भाव सागर से पार हो जाता। अब लो इतनी सी बात, वो छोटी सी बेटी तो बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन कहा कि देखो तो पंडित जी तो अच्छो उपाय जानते और हमें नहीं बताओ। हाँ? भगवान का श्रद्धा से नाम लेने से भाव सागर पार हो जाता है, इतना आसान सा उपाय था, क्या जरूरत थी मल्लाय भैया को जगाने की, नाव में बैठ के आने की, इतना बढ़िया उपाय, अब तो कल से मैं यही करूं। और लौट गई बड़े खुश होकर के, और रोज का क्रम अब शुरू हो गया, समय से दूध पहुंचने लगा, पंडित जी बहुत प्रसन्न। पंडित जी ने कहा कि वाह बेटी अब तो समय से दूध लेके आने लगी, मल्ला भैया भी समय से उठने लगे। मल्ला भैया की क्या आवश्यकता पंडित जी? अरे तो काहे से आते हो, क्या तुम नाव खे के आते? बोले नाव की भी क्या जरूरत, तो कैसे आते हो? आपने तो उपाय बताया था उसी से आ जाती हूँ। कौन सा उपाय मैंने बताया था, कब बताया था? बोले एक दिन जब हम 10 बजे आए और दूध हमने चुपचाप रख दिया, आप कथा बांच रहे थे, तब आपने कहा था कि भगवान का श्रद्धा से नाम लो तो भाव सागर पार हो जाते। मैंने दूसरे दिन घड़ा लिया, नदी के किनारे पहुंची और मैंने कहा कि पंडित जी की बात पर मुझे श्रद्धा है कि भगवान का नाम लेने से जब भाव सागर पार हो जाता तो ये तो छोटी मोटी नदी है, मैंने चलना शुरू किया तो मैं चलती चली गई और उस पार आ गई। फिर तो मैंने रोज ही, यही मेरा क्रम है, मैं रोज बोलती हूँ भगवान का नाम, और यही कह करके कि जब भगवान का नाम लेने से भाव सागर पार हो जाते तो ये तो छोटी मोटी नदी है, मैं पार होना चाहती हूँ और होकर के आ जाती हूँ। अब पंडित जी भी बहुत सकते में आ गए, करियो ने ऐसो, नहीं तो उपद्रव खड़े हो जाए हमारी सुन के आप, हाँ नहीं तो डूब उब जाओ तो कहो के महाराज ने जो कहे सो रास्ता बता। पंडित जी भी मुश्किल में पड़े कि यार ये कैसी बात, तो उस बेटी से कहा कि मुझे बताओ कि क्या करती हो तुम, चलो नदी किनारे। अब ले गई वो नदी किनारे गए, अब बेटी ने कहा कि पंडित जी अब बात आपकी है इसलिए पहले तो आप ही करो। अब बहुत मुश्किल, अब पंडित जी बहुत मुश्किल में, अपनी कही बात बहुत कठिन है, कहना आसान है लेकिन अपनी ही कही बात अपने जीवन में घटित हो जावे, ऐसी श्रद्धा ऐसा विश्वास। और पंडित जी ने धोती वोती समारी ऊपर करी, अब फिर बहुत दम साध करके उनने नाम लिया बहुत जोर से भगवान का, और एक पैर रखा। अब पैर रखने की देर थी नदी में, और पंडित जी नीचे, अब नीचे उतनी दूर निकले वहां से चिल्लाए कि बचाओ। अब बेटी को करना क्या था, उसके अंदर तो अपार श्रद्धा, पंडित जी की बात पर श्रद्धा, और उसने वही नाम लिया कि लेती हूं भगवान आपका नाम। सुना है कि आपका नाम लेने से भाव सागर पार हो जाते हैं, तो छोटी मोटी नदी है, और चलना शुरू किया। पंडित जी तक चल करके पहुंची नदी में, हाथ पकड़ करके बाहर ले आई। पंडित जी से इतना ही कहा कि पंडित जी मुझे तो आपकी बात पर विश्वास है, पर आपको स्वयं अपनी बात पर विश्वास नहीं है। इतना सा विश्वास अगर हमारे भीतर जागृत हो जावे, जो जो आचार्य भगवंतों ने हमारे कल्याण के लिए कहा है उस पर हमारा ऐसा ही प्रगाढ़ श्रद्धान हो जाए, तो हमारे जीवन में बहुत मिरेकुलस चेंजेस आते हैं, बहुत चमत्कारिक। और क्या चमत्कार होगा इससे बड़ा, चित चमत्कार से बड़ा। हमारे जीवन में अगर वो श्रद्धा जागृत हो जावे, हमारी दृष्टि निर्मल हो जावे, हमें सम्यक दर्शन हो जावे, तो इस पंचम काल में इससे बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता भैया। ऐसा विचार करना चाहिए, और इस श्रद्धा को अपने भीतर जागृत करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, अर्घ निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फूल झड़ियां, अब बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर बनिया, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, मिथ्या तम नास्विको ज्ञान के नास्विको शिव खानी है, छहो द्रव्य जान वेखो बंध विधि भान वेखो स्वपर पिछान वेखो परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काबू न सताए वेखो भव्योर आनी है, जहां तहां तार वेखो पार के उतार वेखो सुख वे विस्तार वेखो यही जिन वाणी है।
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हारो।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सुदी पशु धूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम रीम परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री श्यामा सागर जी महाराज एवं मुनि श्री भवे सागर जी महाराज के पावन प्रण पुनीत पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति।
विद्यासागर जी, ज्ञान गुणों की खान मुनीश्वर विद्यासागर जी, ज्ञान गुणों की खान मुनीश्वर विद्यासागर जी, धन्यवाद जो आन पधारे विद्यासागर जी, धन्यवाद जो आन पधारे विद्यासागर जी, ज्ञान गुणों की खान मुनीश्वर विद्यासागर जी, ज्ञान गुणों की खान मुनीश्वर विद्यासागर जी, धन्यवाद जो आन पधारे। सागर जी, ज्ञान गुणों की खान मुनीश्वर विद्यासागर जी, ज्ञान गुणों की खान मुनीश्वर विद्यासागर जी, धन्यवाद जो आन पधारे विद्यासागर जी, धन्यवाद जो आन पधारे विद्यासागर जी, ज्ञान गुणों की खान मुनीश्वर विद्यासागर जी, ज्ञान गुणों की खान मुनीश्वर विद्यासागर जी, भागी जो खान पधारे। Thank you.